ओम शांति। ज्ञान सरोवर के इस सुंदर परिसर में आप सबका स्वागत है। जो पीछे बैठे हुए हैं भाई बहने, वो आगे आ जाए प्लीज, पीछे ना बैठे, आगे आ जाए। सब भाई बहनों से नम्र निवेदन है, आगे आ जाए, आगे से बैठे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा उसकी भगिनी संस्था राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन अंतर्गत कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन एंड राजयोगा रिट्रीट में आप सबका खुले सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का विषय है मृदा पर्यावरण एवं जैव विविधता का संरक्षण। उसकी परिचर्चा के लिए हमारे यहाँ अपने मेहमान आमंत्रित है, तो मैं उनको स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमारे आज की सभा की अध्यक्षा आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मीबेन जी, आप डायरेक्टर सोनीपत रिट्रीट सेंटर के हैं। हमारे मेहमान भ्राता डॉक्टर अनंत कुमार सिंह जी, कुलपति चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। हमारे दूसरे मेहमान भ्राता पीयूष कुमार शर्मा, निर्देशक राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान लखनऊ। हमारा मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमार जिग्नेश भाई, पूर्व ट्रेनिंग ऑफिसर इपको कलोल। और हमारा अनुभव सुनाने के लिए ब्रह्मा कुमार पहलाद भाई, पूर्व SMS आत्मा योजना टॉक। आप सर्व को निवेदन है कि स्टेज पर पधारे। आइए दीदी। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, आपकी याद के बिना प्रभु प्रोग्राम की शुरुआत नहीं होती। तो 3 मिनट हम परमात्मा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। हमारी भारतीय संस्कृति के प्रणाली मुजब आए हुए मेहमानों का गुलदस्ते और बेस द्वारा स्वागत करेंगे। मैं अपनी बहनों को निवेदन करती हूँ कि गुलदस्ते और बेस द्वारा स्वागत करें और आप सब करतल ध्वनि से आए हुए मेहमानों का स्वागत करेंगे। तुलसी का पौधा आध्यात्मिकता और प्रकृति का प्रतीक है। तुलसी का पौधा ऑक्सीजन प्रदान करता है और ऐसा कहा जाता है कि जहां उसको रखते हैं वहां मच्छर भी नहीं आते हैं। ये भी आप समझ लेना कि तुलसी का पौधा कितना महत्वशाली है। पी पी खूब दबा कर पी, लेकिन आप जानते हैं हम जिंदगी भर पी के पीछे भागते रहते हैं। जो मिलता है वो भी पी से, नहीं मिलता है वो भी पी से। पी से पत्नी, पी से पति, पी से पुत्र, पी से पुत्री, पी से परिवार, पी से प्रेम, पी से पार्टी, पी से पैसा, पी से पब्लिसिटी। पी से पढ़ते पढ़ते पाप भी होता है, पी से पतन भी होता है और अंत में होता है पी से पछतावा। पाप के पीछे पड़ने से अच्छा है हम परमात्मा के पीछे पड़े, पीछे पुण्य कमाए और आखिर में पी से प्रणाम स्वीकार करें। ओम शांति। आज जिस विषय को लेकर के हम चल रहे हैं वो है हमारी मिट्टी, पर्यावरण और जैव विविधता। मिट्टी पारितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, वो धरती पर विविध जीव समूह का पोषण कर उसे जिंदा रखती है। मिट्टी में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है और देश की नियति का भी निर्धारण करता है। इसके नष्ट होने से संपत्ति और संस्कृति दोनों नष्ट हो जाते हैं, अर्थात इसका संरक्षण आवश्यक है। वैसे पर्यावरण में भी सभी चीजें शामिल हैं, जीवित और निर्जीव, जिनका मानव अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। यह हमारे दैनिक जीवन के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य पहाड़ों, झीलों, नदियों, रेगिस्तानों और अन्य आश्चर्यजनक प्राकृतिक घटकों की सुंदरता की सराहना केवल इसलिए कर पाता है क्योंकि पर्यावरण अभी भी अस्तित्व में है। वर्तमान समय हम पृथ्वी के तापमान में वृद्धि देख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पर्यावरण को बचाने के बजाय उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और जैव विविधता हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का अनिवार्य हिस्सा है। पर्यावरण संतुलन व सतत विकास के लिए यह विविधता बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे ब्रह्मा कुमार जिग्नेश भाई जी को, वो अच्छी तरह से हम लोगों को इस विषय पर समझाएंगे कि संरक्षण कैसे किया जाता है और हमें उसमें क्या प्रदान करना है। ब्रह्मा कुमार जिग्नेश भाई, पूर्व ट्रेनिंग ऑफिसर, इफको कलोल।
आप सभी को दिल से प्रणाम है। ओम शांति, ओम शांति। सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज, और उसके अंदर ये बहुत ही गहरा विषय है जो है मृदा पर्यावरण एवं जैव विविधता का संरक्षण। इस विषय को रखने के लिए हमारे बीच हमारे अध्यक्ष स्थान पर आदरणीय ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी जी, दीदी जी डायरेक्टर ऑफ सोनीपत रिट्रीट सेंटर, और दीदी जी के सानिध्य में बहुत ही मधुरता और दीदी जी का गुह्यता योग के ऊपर है। ऐसे ही हमारे साथ अतिथि विशेष परमादरणीय भ्राता डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, जो कुलपति चंद्रशेखर आजाद कृषि यूनिवर्सिटी से कानपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं। भ्राता पीयूष कुमार शर्मा जी और हमारे प्यारे भाई ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई, जिन्हों के अनुभव आप सुनकर आपको महसूसता होगी कि हमें भी इसी कृषि के ऊपर जल्द से जल्द कार्य करना है, और आप सबका हाथ इस कार्य में बहुत ही सहज रूप से इस कार्य में आगे बढ़ जाएगा उनके अनुभव सुनकर। ऐसे ही हमारी बहन ब्रह्मा कुमारी आदरणीय संगीता दीदी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस विषय को रखने के लिए मुझे स्थान दिया। यह विषय मृदा मन मिट्टी धरती माँ, कल ही हमने देखा था कि भूमि पुत्रों, धरती के हम पुत्र और धरती हमारी माँ है, उस माँ और प्रकृतिपति परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध से हम कृषि में एक नवीनतम कार्य कर सकते हैं। मिट्टी को, उनकी सेहत, सॉइल हेल्थ को ठीक करने के लिए हम ऐसा क्या करें ऐसा कौन से संबंध के द्वारा और प्रकृति के साथ जुड़कर आध्यात्मिक कृषि में मिट्टी को, हाँ जी, परम आदरणीय भ्राता पीयूष कुमार शर्मा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी स्थान पर ग्रहण कीजिए। भ्राता पीयूष कर साहब का भी बहुत तहे तहे दिल से धन्यवाद है, उनका हार्दिक स्वागत है। भ्राता पीयूष कुमार शर्मा जी, निदेशक राज्य कृषि प्रबंधक संस्था लखनऊ से हमारे बीच उपस्थित हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश का हेडक्वार्टर और पूरे भारत का सबसे बड़ा कृषि का ऐसा स्थान, भाई जी के स्वागत के लिए बहने उनको तुलसी और बेस से उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। हम सब भी तालियों से उनका हार्दिक स्वागत करें। तो इस विषय बहुत गहरा विषय है कि मिट्टी, धरती माँ, और बहुत सारे कैंपेन भी चलते हैं सेव सॉइल। मिट्टी को हम कैसे बचाएं? धरती हमारी माँ है, तो प्रकृति के पांचों तत्वों को हम देव तुल्य के रूप में मानते हैं। इसीलिए जल को देवता कहते हैं, वायु को देवता कहते हैं। देवता माना देने वाले, और मां जो पुत्रों के बिना नहीं रह सकती, पुत्र मां के बिना नहीं रह सकता। और मां जैसे हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना हुआ है, ऐसे धरती मां को भी ये पांचों तत्व द्वारा उसको कार्यान्वित करना जरूरी है। एक छोटा सा वीडियो आपके साथ में प्ले करना चाहता हूं कि इसमें पूरा विषय को आपको क्लियर होगा कि प्रकृति के साथ रहकर और प्रकृतिपति परमात्मा के साथ रहकर हमें ऐसी मिट्टी मिली थी कि जिसमें प्रकृति पशुधन था, पेड़ पौधे थे, बायोडायवर्सिटी थी, और मिट्टी ऐसी थी जिसमें सौंडी खुशबू आती थी, जिसमें जैव माना सूक्ष्म जीव अनगिनत थे। तो ऐसी मिट्टी में जो प्रकृतिपति परमात्मा ने हमें गिफ्ट में दिया, अगर हमने क्या किया, हमने उसको कैसे संभाला और हमने कैसे उसको बिगाड़ा, ये छोटे वीडियो के द्वारा हम समझेंगे कि हमें ऐसी प्रकृति मिली थी कि जिसमें अनगिनत जीव सृष्टि थे, मगर इंसान ने, मानव सिर्फ और सिर्फ लेना चाहता है, देना कुछ चाहता नहीं है। देता है क्या हम धरती मां को? कुछ देते हैं कि सिर्फ लेते हैं? देते हैं। मां के साथ हमारा कितना गहरा संबंध है, अगर हर कोई ये जान लेना तो कभी भी मां को दुखी नहीं करेगा, मां के दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। ये मां के साथ अगर हमें आत्मीयता से संबंध जोड़ना है, क्योंकि आज दिन तक हमने जाने अनजाने में मां धरती को विष दिया है, जहर दिया है कि नहीं दिया है? जो हमारी सनातन कृषि पद्धति में धरती को मां कहते थे, इसीलिए खेत में प्रवेश करते ही मां धरती को प्रणाम करते थे, मां धरती की आज्ञा लेते थे, जब हल जोतते थे तो पहले कहते थे कि हे मां, आपको दर्द होगा, मगर मां आपने मुझे अन्नदाता बनाया है, मैं आपको चीर कर आपके अंदर मोती समान बीज देता हूं, मां इन मोती समान बीज को आप अपनी गोद में लेकर ऐसा शुद्ध सात्विक अन्न देना जिसके पूरे संसार में सदैव हर एक आत्मा के मन में सुख शांति भी बनी रहे और पौष्टिक शुद्ध सात्विक अन्न भी मिलता रहे। वो मां हमेशा देती रही, मगर हमने मां के साथ क्या किया, एक छोटे से वीडियो में देखेंगे। ले कीजिए। पेड़ थे, पशुधन था, बायोडायवर्सिटी, तितली, भंवरे, केंचुए थे। हमने क्या किया, पेड़ों को निकाल दिया। हमने पेड़ों को निकालकर उसके अंदर जुताई करके खेत बुआई किया। ऐसा अन्न पैदा हुआ कि अनगिनत गाड़ियां भर भर कर हम अन्न ले गए, मगर मनुष्य आत्मा कैसा है, लेने के बाद उसको क्या किया, जला दिया। जो कृषि अवशेषों को हमने जला दिया, जलाने के साथ साथ हमारे जो मित्र जीव थे, जो मिट्टी इतनी खुशबूदार अच्छी मिट्टी थी, वो हार्ड सॉइल हो गई। उसके अंदर मोती समान बीज को दिया, मगर मिट्टी के अंदर जो जीव सृष्टि थी वो खत्म होने के बाद मां धरती फिर भी प्रयास करती रहती है। हमने केमिकल्स खाद भी डाले। पहले हमने देखा गाड़ियां भर भर कर अन्न ले गए थे, आज जितना अन्न हम सोइंग किया उतना अन्न भी हम नहीं ले पाए। मां धरती दिन प्रतिदिन हमने गहरी जुताई करते रहे, ऊपर की सतह को नीचे, नीचे की सतह को ऊपर करते रहे, और इतनी हार्ड सॉइल होने के बाद दुनिया सभी की डिमांड तो रहती है, हमें अन्न चाहिए, फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, मगर सॉइल को हमने डे बाय डे कैसे कर दिया। और ऐसी सॉइल करने के बाद हमारी जीवन भी गेम ओवर हो जाए। मगर आप सब उन महान आत्माओं में से हो कि ये आपकी गेम ओवर होने से पहले प्रकृतिपति परमात्मा ने आपको इस स्थान पर बुला लिया है। अब एक कदम आपको उठाना है और प्रकृतिपति परमात्मा के हजार कदम आपके साथ हैं। क्या आप सब उस प्यारे पिता परमात्मा के साथ एक हाथ उठाकर उनको ये विश्वास दिलाइए कि हाँ, मैं प्रकृतिपति परमात्मा के साथ हूं। सभी अपना एक हाथ उठाकर परमात्मा को साक्षी देकर हम मां धरती की और प्रकृति की सेवा के लिए अपना योगदान दें। धन्यवाद। सनातन कृषि पद्धति में मृदा, पर्यावरण एवं जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें, तो हमारी जैव सृष्टि को हम सब ने देखा कि हमारी मित्र जीव दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, हमारी सॉइल मिट्टी की सेहत भी। कल ही ब्राता जी ने एक प्रेजेंटेशन के द्वारा हमें बताया कि हमारी मिट्टी की सेहत के विषय पर पूरे विश्व भर के साइंटिस्ट इसके ऊपर ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में अगर यही रीति से हम खेती करते रहें तो हमारी मिट्टी की सेहत ऐसी हो जाएगी जिसमें से अन्न पैदा नहीं होगा। तो मिट्टी की सेहत खराब न हो उससे पहले कृषि, जो हमारी आजीविका है, एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह खेती और पशुपालन के माध्यम में उत्पादनों जैसे भोजन, खाद्यान्न, फाइबर एवं अन्य वांछित उत्पादनों का उत्पादन करने की प्रक्रिया है। यह मानव उपयोग के लिए पौध एवं जानवरों के विकास का प्रबंधन करने का एक कला है, एक ऐसी कला है बिना कैटल्स के बिना हम एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाएंगे। एक किसान भाई आंध्र प्रदेश से, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ही सालों से प्रयास कर रहा था, ऐसे ही मेरा एक मित्र अफ्रीका में रहता था और अफ्रीका छोड़कर जब भारत में आया और उसने एक बुक का लिखा जिसमें लिखा है काउ सेव द वॉटर। सभी प्रकार के एनिमल्स में ये देखा गया है कि मिट्टी को अगर जीवित रखना है तो पशुधन बहुत आवश्यक है। बिना पशुधन मिट्टी की सेहत ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि पशुधन जब वो चलता है उसकी पैरों की खड़ी धरती मां की गोद में, तो पानी भी नीचे से ऊपर की तरह खींचा चला आता है। जब उसका गोबर मिट्टी के ऊपर गिरता है तो जीव सृष्टि का निर्माण होने लगता है। कुछ ऐसी जगह पर जहां मिट्टी इतनी खराब हो गई है वहां पर भी आप देखना गोबर को, जहां कोई भी पशुधन ने गोबर रखा है 2-3 दिन के बाद गोबर को उल्टा करके देखिए तो आपको उसमें छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। माना बायोडायवर्सिटी को भी, प्रकृति को फिर से जीवित करने में सबसे अहम रोल है वो है पशुधन। अभी पिछले कुछ सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और स्वच्छ भारत अभियान में बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन जी, सचिन तेंदुलकर और भी अन्य महानुभाव ने स्वच्छ भारत के ऊपर कार्य किया। मगर सबसे बड़ा स्वच्छता का जो कोई कार्य करता हो तो वो है हमारा पशुधन। आप मानते हैं? मानते हैं तो हाथ उठाकर बताइए। हमारा पशुधन जो भी सूखा हरा या तो हमारे सब्जी के कुछ भी कचरा, कूड़ा कचरा, शहरों में भी जो रहते हैं वो देखते हैं कि फ्रूट्स के छिलके हो या कुछ भी कचरा, ऐसे आप डस्टबिन में रखते तो कितना स्मेल आता है। वही चीज हम अपने पशुधन को खिला देते हैं तो पशुधन उसे खाकर गोबर के रूप में हमें सोना देती है। देती है कि नहीं देती? ऐसा सोने में परिवर्तन करने का कार्य कौन कर रहा है? स्वच्छ भारत अभियान में सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हो तो हमारा पशुधन है, कैटल है। अगर आप पशुधन को आपकी बागवानी या आपकी खेतों में भी खाली सिर्फ और सिर्फ कुछ एरियाओं में उसे, चाहे पेड़ पेड़ के आसपास भी पशुधन को आप रख दो, वो खाली पेड़ के पास घूमते रहेंगे ना, वहीं पर अपना गोबर गौमूत्र डालेंगे या उसका मूत्र और गोबर डालेंगे, उससे देखिए कि आपकी मिट्टी को आप पहले सॉइल टेस्ट करवाइएगा कि आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है और फिर कुछ समय के बाद आप उसका ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट करके देखिएगा। ये प्रैक्टिकल रूप में मैं बता रहा हूं कि आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा। जितनी जैव माना बायोडायवर्सिटी में सबसे अहम रोल है कि बैक्टीरिया जितना बढ़ेंगे उस बैक्टीरियों का पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उन बैक्टीरियों का जब उसमें से फंगल और जो खेत में पड़ा हुआ कुछ भी कूड़ा कचरा है वो फंगल उसको कंपोस्टिंग का काम करता है और इसको कहते हैं जैव विविधता में एक सबसे बड़ा अहम रोल है। जीवांश कहते हैं, जो अभी फार्मिंग के अंदर कहते हैं ना, जीवांश का बहुत बड़ा रोल है। जीव का अंत, जो जीव धरती मां की गोद में अपना अंत कर देता है और उसके अंदर से अनगिनत माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में हमें मिल जाते हैं और हमारी धरती मां को जीवित रखने में बहुत कार्य करते हैं। इसीलिए प्रकृति के साथ संबंध बहुत बहुत आवश्यक है। मगर प्रकृति के साथ संबंध कैसे जोड़े? इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए आप सभी ने आज उसकी नींव को रखा है कि प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने का सहज रास्ता है, वह है राजयोग। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा सबसे पहला स्वयं की पहचान मिलती है। हमें स्वयं की पहचान मिलेगी प्रकृतिपति परमात्मा की पहचान मिल जाएगी तो हम प्रकृति के साथ आत्मीयता से संबंध जोड़ पाएंगे, मां धरती के साथ संवेदना से जोड़ पाएंगे। कहते जहां भाव और भावना है वहां आपको ना मिले वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। हां, साइंस के रूप से आप नहीं मानेंगे, मगर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता भाव और भावना से जुड़कर प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर आप देखिए, मां धरती आपको अनगिनत देती है। और प्रकृति का सम्मान कीजिए, जितना आप प्रकृति का सम्मान करेंगे प्रकृति आपको अनगिनत देगी। इसीलिए ये सनातन कृषि पद्धति में शाश्वत योगिक खेती को बहुत अहम रोल है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले ये सिखाया गया है कि धरती को मां तो कहते हैं, मगर सबसे पहले कार्य क्या करना है, उस मां से क्षमा याचना करनी है कि हे मां, मैंने आपको बहुत दर्द दिए, बहुत दुख दिए, जाने अनजाने अज्ञानता वश। अब मां, क्या आप प्रकृतिपति परमात्मा के कार्य में मदद करने के लिए तैयार हो? आप समझ लो, बच्चा कैसा भी हो, मां कभी बोलेगी नहीं बच्चे। अगर बच्चा माफी मांग लेता है तो मां तो भोली होती है, मां तुरंत कहती जी बच्चा। तो वैसे ही मां धरती से सबसे पहले कार्य करना है क्षमा मांगना। जितना आप मां धरती से सम्मान देंगे, क्षमा मांगे, मां धरती से जुड़ाव जोड़ेंगे तो मां धरती आपको अनगिनत देगी। और मां धरती को ताकतवर करने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना है, और उसमें जो अहम रोल था वो है आत्म साक्षात्कार। बिना आत्म साक्षात्कार आप प्रकृति और प्रकृतिपति परमात्मा से नहीं जुड़ पाएंगे। प्रकृति और अन्न का, प्रकृति और मानव का क्या रोल है? एक होता है ऋणी के रूप में, प्रकृति को आभार व्यक्त करता है और प्रकृति उसे अनगिनत देती है। दूसरी तरफ मानव क्या करता है? इच्छावश ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए मां धरती का दोहन उसे दर्द देता रहता है, अनगिनत केमिकल्स ये सब डाल डालकर। मगर हम मां धरती के साथ सम्मान से और उसे प्यार से जुड़ जाए और प्रकृतिपति परमात्मा से जुड़कर पांचों तत्वों को वाइब्रेशन माना श्रेष्ठ भावना से हम मां धरती को फिर से जीवित, उसको ताकतवर बना सकते हैं। और पांचों तत्वों को अगर प्रकृतिपति परमात्मा की मदद से धरती को ऐसा सोना पैदा कर सकते हैं कि जो स्वर्णिम भारत लाने में अहम रोल है, तो क्या आप चाहते हैं कि सतयुगी दुनिया में आपको जाना है? कौन चाहता है सतयुगी दुनिया में जाने के लिए? सभी तैयार हैं? पीछे कोई तैयार नहीं है? सब तैयार हैं? हाथ उठाइए अगर जो जाना चाहता है। बहुत अच्छा, ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें देवतुल्य बनना पड़ेगा। और देवतुल्य का कार्य देवता माना देने वाला, हमें मां धरती को और प्रकृति के पांचों तत्वों को देना है। मगर हम कौन देने वाले हैं? देने वाला दाता वो प्रकृतिपति परमात्मा है, हम सिर्फ माध्यम है। हम आत्मा, मनुष्य आत्माएं उस प्रकृति के पांचों तत्वों को वाइब्रेशन दे सकते हैं। आपके मोबाइल में कोई केबल है? बिना केबल आप कॉल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कैसे करते हो? आपने तो कॉल डायल किया, यहां से यूएस जाता है, यहां से लखनऊ जाता है, यहां से सर कानपुर भी कॉल जाता है ना, तो ये क्या काम करता है कि नहीं? कोई वाइब्रेशन शक्ति, एनर्जी जो कैसे ट्रांसफर होती है, वैसे उस प्रकृतिपति परमात्मा के साथ जुड़कर वो सर्वोच्च शक्ति से उस ऊर्जा को हम प्रकृति के साथ खेती में प्रयोग कर सकते हैं। खेती में संपूर्ण सफलता के लिए प्रकृति, पशु पक्षी और जीव जंतुओं का सहयोग आवश्यक है। तो इन जीव सृष्टियों के प्रति भी और प्रकृति के अंदर ये पांचों तत्वों को साथ जुड़कर इन जीव सृष्टियों को सहयोग कैसे दे पाएंगे? आत्मीय संबंध से, वो भी जीव सृष्टि जीने लायक है। कल बताया ना कि हर एक जीव का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक प्रकृति के अंदर जैसा जैसा स्थान है, जैसा जैसा वायुमंडल है, हर एक राज्य में अलग अलग आप देख पाएंगे कि हर एक की स्थिति, कल्चर, वेदर, मिट्टी की सेहत, उसके अनुसार जीव सृष्टि का निर्माण होता है। एक जैसा नहीं होता। अब गुजरात में गीर के सिंह हैं, उस गीर के सिंह को कर्नाटका में या केरला में ले जाए तो वो सिंह इतना सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। तो प्रकृति ने कितनी सुंदर रचना की है, हर एक जीव को हमें क्या करना है, सहयोग की आवश्यकता है। और उसको कैसे सहयोग दे सकते हैं, स्नेह और प्रेम के रिश्ते से जोड़ना। और वो हमें कौन सिखा सकता है? प्रकृतिपति परमात्मा। इसलिए आवश्यक है आध्यात्मिक शक्ति की, जो हमें राजयोग से मिलती है। इसीलिए बार बार हमारे भ्राता श्री सुमन भाई आपको कहते हैं कि सुबह का सेशन मिस नहीं करना। क्यों कहते हैं? यही आध्यात्मिक शक्ति है जिससे आप स्वयं को और परमात्मा को और उसके साथ संबंध जोड़ने की विधि और जीवन रूपी ड्रामा में कैसे हमें पार्ट प्ले करना है, उसका रहस्य समझ में आएगा। परमात्मा की शक्ति और गुणों को प्रकंपन देकर सहयोग लेना, और वो कार्य जब आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो परमात्मा से शक्ति लेकर, जो परमात्मा की शक्ति और गुण है, उस गुण को क्या करेंगे, प्रकंपन के द्वारा सहयोग दे पाएंगे। स्नेह, पवित्रता, शक्ति, इस शक्ति को आप ट्रांसफर कर सकते हैं प्रकृति के अंदर। आज तक हमने अज्ञानतावश जो प्रकृति को बहुत दुख दिया है, अब हमें क्षमा मांगकर आगे बढ़ना है। अच्छी उपजाऊ जमीन के लिए हमारी मिट्टी, धरती माँ कैसी होनी चाहिए, हमारी सॉइल कैसी होनी चाहिए, जिसमें 2.5% ऑर्गेनिक कार्बन हो, 25% पानी नमी बनी रहे उसके अंदर, 25% उसके अंदर हवा कोरोसिटी रहे कि हवा उसके अंदर आनी जानी चाहिए। अगर मिट्टी की सॉइल इतना हार्ड हो जाएगा तो भी हमारी मिट्टी जीवित नहीं रह पाएगी, जीवांश जो मित्र जीव है वो भी नहीं जीव रह पाएंगे, और मिट्टी के अंदर 45-48% खनिज पदार्थ की आवश्यकता है जो आपको अच्छी मिट्टी की पहचान कर सकते हो। तो ऐसी अच्छी मिट्टी बनाने के लिए सबसे अहम रोल है हमारी गौ माता, और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हैं, अनगिनत रिसर्च, उसके गोबर, गौमूत्र उसके अंदर से, और अभी भी इसको और अच्छी तरह से अगर आप सब एक एक हाथ बढ़ाओ, मैं ये कहता हूं कि विज्ञान एक ऐसी शक्ति है, मगर विज्ञान के साथ आध्यात्मिकता जुड़ जाए तो वो और तेजी से भाग सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देख रहा हूं कि आज विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों साथ में लेकर कार्य हो रहा है, चाहे वो चंद्रयान हो या सूर्ययान के लिए करते हैं, तो जब भी उसका कार्य के लिए पहले आध्यात्मिकता से जुड़कर वो साइंटिस्ट उस प्रकृतिपति परमात्मा को भी पहले उनको रिक्वेस्ट करते हैं और उनके द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो आप चाहते हैं सब जो भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों एक साथ जुड़ जाए तो हर कार्य संभव है, हर कार्य संभव है। और सत्ययुगी भारत यही लाने के लिए आप सब एक नींव के पत्थर है। जीव सृष्टि जो दिन प्रतिदिन समाप्त हो रही है, जो हमारे मित्र जीव हैं, कितने छोटे थे तो कितने अलग अलग प्रकार के बटरफ्लाई, तितली, भंवरे देखते थे, आज हम लोग उसके डे मना रहे हैं। मना रहे हैं कि नहीं मना रहे? इंटरनेशनल लेवल पर हम ऐसे जीव सृष्टि को और उसमें हनी बींग, इसका कितना बड़ा रोल है पोलिनेशन में, साथ ही साथ हमारे जो कीट नियंत्रण में सबसे बड़ा अहम रोल होता है जो हमारे मित्र जीव है जो समाप्त हो रहे हैं, तो ऐसे मित्र जीव को हमें बचाना है। बीमार मिट्टी को सेहत ठीक करने के लिए हमारी मिट्टी की सॉइल को ठीक करना है, और वो सेहत ठीक करने के लिए जरूरी है कि हमारे खेत में से मिलने वाली जो भी चीज है उसे वापस हम खेत में दें। ग्रीन मैन्यूर लगाए, हमारे प्रहलाद भाई आपको बताएंगे एक छोटा सा अनुभव, हमारा आरोग्य बन करके एक स्थान है जिसकी मिट्टी और पानी कई सारी यूनिवर्सिटी में उसके टेस्ट करवाए, मिट्टी भी उसकी सेहत भी बहुत खराब थी, पानी भी खराब था, मगर ऐसी मिट्टी को उन्होंने आज ऐसा सुंदर सा वन बना दिया है और सिर्फ राजयोग और भौतिक चीज जिसमें ग्रीन मैन्यूअर और ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ा है वो आपको बताएंगे। मगर इन सब में सबसे ज्यादा आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो है मानसिक प्रदूषण। हमने मिट्टी को तो प्रदूषित किया, पानी को प्रदूषित किया, जितना चाहते उससे अधिक पानी देते हैं, पानी ऊपर की सतह से बह जाता है, पानी नीचे तक नहीं जाता है क्योंकि जीव सृष्टि खत्म हो रही है जिसके कारण मिट्टी में कोरोसिटी नहीं रही है, मिट्टी में पानी नीचे तक नहीं जा पा रहा है क्योंकि केंचुए खत्म हो रहे, तो मिट्टी ऊपर से पानी बहकर चला जाता है। तो ये सारा तो प्रदूषण है, मगर साथ ही साथ सबसे बड़ा प्रदूषण है मानसिक प्रदूषण। आज मानव में हिंसा की वृत्ति बढ़ती जा रही है और वही को ठीक करने के लिए वनस्पति, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया कि हमारे जो भी जीव प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, हम जो भी वनस्पति उसके अंदर भी संवेदनाएं हैं। सर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर टीसी सिंह, डॉक्टर दौलत भाई देसाई, अनगिनत साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि प्रकृति में संवेदनाएं हैं, पानी में भी संवेदनाएं, पानी हमारे सबसे ज्यादा संकल्पों को रीड करती है। तो फिर से ऐसी धरती माँ को ठीक करने के लिए कहते थे कि पहले स्लोगन मिला था कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ चाकरी, मगर फिर कहते थे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, विज्ञान तो और तरक्की को कर रहा है, अब जरूरी है जय ईमान। और ईमान कब जागृत होगा? जब प्रकृतिपति परमात्मा से जुड़कर हम श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो कि साइंस कैसा है, साइंस के पैर बहुत वो विकास करता है, इतना भाग रहा है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे रफ्तार से भाग रही है, मगर वो अंधा है। आध्यात्मिकता कैसा है? लूला है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाए कंधे पर कंधा मिलाकर तो दोनों रास्ता भी बहुत सहज रूप से स्वर्णिम भारत का रास्ता बना सकते हैं। तो विज्ञान के साथ जुड़कर हमारा स्वर्णिम भारत हम ऐसा बनाए, हर एक दीप ऐसा जलाए कि जिससे ऐसी रोशनी पैदा हो। और एक ही गीत आखिरी में कहता चाहता हूं कि साथी हाथ बढ़ाओ, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। क्योंकि आप सब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अलग अलग स्थानों के बहुत महानुभाव हो, आप लोगों के पास अनगिनत ज्ञान है, अगर आप प्रकृतिपति परमात्मा के साथ आध्यात्मिकता से जुड़कर आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे तो इस कृषि में हम अनगिनत प्राप्ति कर सकते हैं। इस गीत को ऐसे में प्ले करना चाहता था, अगर आप ध्यान से सुनते, मगर एक बार जरूर ये गीत सुनना आंखें बंद करके और उस प्रकृतिपति परमात्मा को याद करके, अगर आप सब एक हाथ बढ़ाएंगे तो ये जल्दी से ये कार्य संपन्न हो जाएगा और ये सनातन कृषि पद्धति को जल्दी से आगे बढ़ा पाएंगे। आंखें बंद कर लीजिए, एकदम रिलैक्स होकर, और सुनिए इस गायन की एक एक गीत की लाइन जो प्रकृतिपति परमात्मा के साथ जुड़कर
साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे,
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना,
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना,
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे,
साथी हाथ बढ़ाना साथी रे,
साथी हाथ बढ़ाना साथी रे।
ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमार जिग्नेश भाई का। आपने देखा होगा जिग्नेश भाई युवा है, और ऐसे युवा जो हमारे भारत देश के इस कार्य में लग जाए तो भारत देश को जगत गुरु बनने में देरी नहीं लगेगी। और जो अभी हमारी प्रकृति और वायुमंडल परिवर्तित हो रहा है वो जल्दी से पॉजिटिव बन जाएंगे और हम सब सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए मैं कहूंगी, आप दीप नहीं ज्योति हो, आप छीप नहीं मोती हो, आप सितार नहीं संगीत हो, ज्योति मोती संगीत तीनों ही कुदरत की अनुपम सौगात हो। फिर से जिग्नेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पध्वनि से भी हम सब उनका धन्यवाद करें। अभी हमारे बीच ऐसा एक व्यक्तित्व है जो आप सबने कल सुना, लेकिन आज फिर से हम उनको सुनने जा रहे हैं। भ्राता डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी, कुलपति चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से आप हैं। सत्कार्यों आपकी शोभा है, सज्जनता आपकी सुवास है, प्रसन्नता आपकी सुगंध है, परोपकार आपका रटन है। ऐसे हमारे भारत के प्रतिनिधित्व ताइवान में करने वाले आप भारतीय प्रथम भारतीय नागरिक हो, उसका हम सबको बहुत बहुत गर्व है। भ्राता डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी,
धन्यवाद। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। एक बार पुनः आपके समक्ष हम प्रस्तुत हैं, हमें बहुत ही प्रसन्नता है। आज सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम समाज का दूसरा दिन है और हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मृदा पर्यावरण एवं जैव विविधता का संरक्षण एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हम लोग विमर्श कर रहे हैं, और जिग्नेश भाई जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तावना स्वरूप इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को जानकारी दी। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सुदृढ़ थी, सोची हुई जानकारी थी, कैसे प्रभावशाली है, हो सकती है, इसके बारे में आपको बता रहे थे, और ये कैसे हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हुई है इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। इस विषय पर जब हम विमर्श करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, हमारे साथ मंच पर ब्रह्म कुमारी बहने हैं, ब्रह्म कुमार जिग्नेश भाई, ब्रह्म कुमार प्रहलाद भाई, भ्राता पीयूष कुमार शर्मा जी, ब्रह्म कुमारी लक्ष्मी बहन जी, जिनकी अध्यक्षता में ये आज का सेशन कार्यालय का बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है, ब्रह्म कुमारी संगीता बहन जी जो कि संचालिका है ब्रह्म कुमारी इस कड़ी के, आप सबकी उपस्थिति भी एक बहुत बड़ी सूचित करती है कि कितना दिलचस्पी है इस विषय पर। देवियों और सज्जनों, जैसा कि कल भी इस बात पे चर्चा हुई थी कि पर्यावरण बदल रहा है, मिट्टी के ऊपर भी और मिट्टी के अंदर का भी। मिट्टी के ऊपर का पर्यावरण जो होता है, हवा को छोड़कर सबको हम देख सकते हैं, हवा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो पर्यावरण मिट्टी के अंदर होता है वो बहुत विशाल है। इसमें कितने करोड़ों अरबों जीवधारी हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनका वो जो कार्य करते हैं मिट्टी के अंदर वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब आप समझ लीजिए कि जब बीज की बुआई मिट्टी में होती है तो वो अंकुरित कैसे होता, सिर्फ पानी दे देने से नहीं होता है। उसके अंदर अंकुरित जैसे शुरुआत होती, जड़ें निकलती हैं, उसको भोजन की आवश्यकता होती है। उसमें पत्तियां नहीं होती हैं कि प्रकाश संश्लेषण करेगा पानी का प्रयोग करके और तुरंत अपना भोजन खुद स्वतः बनाने लगेगा, जो कि पौधा बड़ा होकर करता, ऐसा नहीं होता है। उसको पोषण बीज में जो संचित पोषक तत्व है वो, और जब जड़ें नीचे जाती हैं तो मिट्टी से सूखता है वो, फिर उसका वृद्धि और विकास होता है। लेकिन वो पौधा जो शोषित करता है मिट्टी में उपलब्ध जो पोषक तत्व होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, उसको कौन इस रूप में बदलता है ताकि पौधों की जड़ें आसानी से सोख लें, वो होती है बैक्टीरिया, फंगस, जिनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। वो मिट्टी के अंदर अरबों की संख्या में होते हैं, 24 घंटे ये काम करते हैं। इनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। हमने उत्पादन कर करके, कृषि रसायनों का प्रयोग कर करके, कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग कर करके उनको नष्ट कर दिया है। केचुओं की संख्या खेत से गायब हो गई है, मर गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। लेकिन यह बहुत दिन नहीं चल सकता है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां पे कि उत्पादकता घटने लगी है, अधिक से अधिक उर्वरक देने की जरूरत पड़ रही है। उर्वरक हम दूसरे देशों से आयात करते हैं और हमारी विचारधारा है कि कैसे ग्रामीण परिवेश में आत्मनिर्भरता लाई जाए, देश में आत्मनिर्भरता लाई जाए, ताकि हमें उर्वरक के आयात में जो पैसा खर्च होता है 2 लाख करोड़ के आसपास, 2 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष, इससे भी ज्यादा, जबकि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हम इसको रोक सकते हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखना अति आवश्यक है, क्योंकि हमें ज्यादा अन्न उत्पादन की जरूरत है आने वाले वर्षों में, आने वाले दशकों में। यह एक चुनौती है। और एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे पर्यावरणीय माहौल में, जबकि पूरी दुनिया का, हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का तापक्रम बढ़ रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सूरज से जो गर्मी निकलती है, पिछले 50 वर्षों में उसमें इजाफा नहीं हुआ है। सूरज की जितनी गर्मी 50 साल पहले भी थी, आज भी उतनी ही है। लेकिन फिर क्यों धरती का तापक्रम बढ़ रहा है? फिर भी धरती का तापक्रम क्यों बढ़ रहा है, यह आपको सोचना पड़ेगा। आप इसके हितधारक हैं, आप इसके स्टेक होल्डर हैं, आपको सोचना पड़ेगा, किसानों को सोचना पड़ेगा। विवशता है हमारी सोचने की। कारण यह है, वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, सूरज से जितनी भी सूरज की रोशनी के माध्यम से जिसको फोटॉन्स के पार्टिकल्स कहते हैं, वो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, उसी में ऊर्जा संचित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको सोखता है और वायुमंडल का तापक्रम बढ़ा देता है। यह एक बहुत बड़ी वजह है जो कि वह हमारे धरती पर तापक्रम बढ़ रहा है। सूरज का तापक्रम नहीं बढ़ा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ी क्यों? हमने उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में, उत्पादकता बढ़ाने के चक्कर में, हमने संतुलित आहार मिट्टी को देना बंद कर दिया। हरी खाद पहले दी जाती थी, अब हरी खाद बहुत ही कम देखने को मिलती है। पशुधन की कमी हो गई, गाय, बैल, भैंस, बकरी, इनकी संख्या कम हुई, फलतः गोबर का उत्पादन कम हुआ। जितनी गोबर मेरे बचपन में पैदा होता था हिंदुस्तान में, सरकारी आंकड़ा है, उसमें कमी आई है और बहुत भारी कमी आई है। होता क्या है, जब हम कृषि रसायनों का प्रयोग खेत में करते हैं तो माइक्रोब्स मर जाते हैं, और ये माइक्रोब्स जितनी भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका अवशोषण करते हैं, उसको कार्बन फिक्सेशन कहा जाता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। तो वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर मिट्टी में रखती थी जैविक पदार्थों के रूप में, और वही उनका भोजन होता था। और जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होता है उसमें थोड़ा सा भी फर्टिलाइजर डाल दीजिए, थोड़ा सा भी कोई पोषक तत्व डाल दीजिए, उसका अवशोषण बड़ी अच्छे से होता है, कम कृत्रिम रसायनों से भी खेत की उत्पादकता बनी रहती है, उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहती है, उत्पाद की जो कैरेक्टरिस्टिक खुशबू होती है, मूली खान की जो खुशबू होती है, पालक की जो खुशबू होती है, हर फसल की, टोमेटो की, आम की, हर फसल की जो खुशबू होती है, जिसको आप पहचानते हैं, अरे इसकी खुशबू गाजर की तरह लग रही है, इसकी खुशबू टमाटर की तरह लग रही है, इसकी खुशबू मिर्च की तरह लग रही है, वो खुशबू गायब हो गई है। क्योंकि ये खुशबू होता किसी भी उत्पाद में, ये सॉयल में जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, 16-17 एलिमेंट्स होते हैं, जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं उनकी उपलब्धता के कारण होती है, और इनका अवशोषण तभी होता है पौधे के द्वारा जब मिट्टी में माइक्रोब्स हों, बैक्टीरिया हों, फंगस हों, मोल्ड्स हों। सारे के सारे बैक्टीरिया हमारे दुश्मन नहीं है, ढेर सारे बैक्टीरिया, ढेर सारे माइक्रोब्स हमारे मित्र हैं, उनको हमने मारा है, इससे उनकी संख्या कम हुई। उन पदार्थों को मिट्टी में कैटलाइजेशन नहीं होता है, पौधे उसका अवशोषण नहीं कर पा रहे हैं, भले ही आप ज्यादा ज्यादा मात्रा में डालिए लेकिन उस शरीर सोखेगा तब तो उसका असर आएगा, इसलिए उत्पाद में खुशी गायब हो गई है, पोषक तत्व की कमी हो गई है, इसलिए मिट्टी बीमार है। ध्यान देने योग्य बात है ये, इसका समाधान बहुत आसान है, जैविक पदार्थों का प्रयोग करना शुरू करिए, कृत्रिम रसायनों का, कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करिए। ऐसे बीमार मिट्टी में जो फसलें हो रही हैं उनकी रोग से, कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, करीब करीब खत्म हो चुकी है। इसलिए आज किसी भी फसल के उत्पाद करने के लिए कुछ राज्यों में तो कृषि रसायनों का यानी हर्बिसाइड्स का बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है, कीड़ों का प्रकोप बढ़ा है, उनकी संख्या बढ़ी है, हर पारिस्थितिकी में बढ़ी है, हिंदुस्तान के हर कोने में बढ़ा है, पूरी दुनिया में बढ़ा है, हमारे यहां ज्यादा बढ़ा है। विदित होगा आपको कि हिंदुस्तान में जो खेती होती है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशन में होती है। हमारे पास हिमालय की एक माउंटेन रेंज है, भारत के नक्शे पर आप देखिए लेह और लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश पूरब तक उसकी दूरी 3000 किलोमीटर होती है, उसका प्रयोग हमने खेती के लिए किया ही नहीं, 3000 किलोमीटर। अभी भी हमारे देश में जो कम तापक्रम की जलवायु की फसलें जिनको कही जाती है, जिनको की पहाड़ों पर इसकी खेती की जा सकती है, उसकी खेती को जिस तरीके से हमें करना चाहिए था, प्रमोट करना चाहिए था, हमने नहीं किया, फलतः उसका हमें आयात करना पड़ता है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। इसलिए देवी और सज्जनों, मिट्टी खासतौर से किसान भाइयों और बंधुओं, आप अगर किसी संस्थान में काम करते हैं, किसान समूह के साथ काम करते हैं, खुद भी खेती करते हैं या करवाते हैं, या किसी तरीके की सरकारी संस्थानों में काम करके योजना बनाने में मदद करते हैं, कृपया इस चीज को फैलाएं, लोगों को बताएं। सिर्फ सूचना के आधार पर खेती करना आज की तारीख में संभव बिल्कुल नहीं है। ज्ञान आधारित खेती हो, संस्कृति आधारित खेती हो, जो हमारी परंपराओं में ज्ञान है उसको सहभागिता के आधार पर खेती को प्रमोट करना शुरू करेंगे, शुरू हुआ भी है। इस विश्व प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहुत अच्छे परिणाम हमें बताया गया है, कल भी और आज सुबह भी बात हो रही थी, उसके बड़े ही सार्थक परिणाम आ रहे हैं ऐसे प्रयोग से, जिसकी जरूरत है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल में बढ़ाएं, लोगों के साथ ऐसी सूचनाओं को शेयर करें ताकि इसकी प्रगाढ़ता खेती में बढ़े। और जिसके पास ऐसे अच्छे अनुभव आ रहे हैं लोगों से बताएं, पड़ोसियों से बताएं, अपने रिश्तेदारों से बताएं, विद्यार्थियों को बताएं, बच्चों को बताएं कि इसका प्रयोग हमने किया था, हमारा उत्पादन बढ़ा है, पुनः उत्पाद में खुशबू आई है, स्वस्थ वातावरण बनेगा, हवा जो हम सांस लेते हैं हमारे लिए अलग नहीं है आपसे, जो हवा जिसका सांस आप लेते हैं उसी का सांस हम भी लेते हैं, इसका परिवर्तन देखने में त्वरित पता नहीं चलेगा लेकिन कुछ समय बाद पता चलेगा। हवा में इतना पोल्यूशन हो गया है क्योंकि माइक्रोब्स जो कि ढेर सारी जहरीली हवाओं का अवशोषण करती हैं उनको हमने खत्म कर दिया है। इसलिए जरूरत है एक ऐसी पद्धति जो कि सदियों से हिंदुस्तान में होती आई है, अनुभव रहा है, किताबों में लिखा गया है उसके बारे में, इसको व्यावहारिकता दी गई थी लेकिन पिछले 400-500 वर्षों में हम लोगों ने इसको बर्बाद कर दिया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हिंदुस्तान के ही नहीं पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस चीज को महसूस कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती हुई जो कि हमने अन्न के उत्पादन में, कुछ वैज्ञानिक तो यह भी कहते हैं कि हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को, वी हैव कन्वर्टेड केमिकल्स इंटू फूड ग्रेन्स, हमने इन रसायनों को अनाज में बदल दिया, जब केमिकल यानी फर्टिलाइजर्स को, एग्रोकेमिकल्स को, और भी ढेर सारे केमिकल्स का प्रयोग होता है कई देशों में, हमारे देश में तो वैसे कम होता है लेकिन इसका प्रभाव हमारे देश जैसे देश जहां पर तापक्रम अधिक होता है, सीजनल रेन्स हैं, विविधता है, जमीन की एक समानता नहीं है, ढेर सारी कृषि की पद्धतियां हैं, हर फसल हर जगह नहीं हो सकती है, देश विशाल है, यूरोप की तरह नहीं है, एक समान क्लाइमेटिक कंडीशन ज्यादातर समान है, हमारे यहाँ कितनी वेरिएशन है। मैं कानपुर से आया हूँ इस बार, कानपुर में 42 डिग्री तापक्रम है, यहाँ पे देख लीजिए बहुत कम तापक्रम है, कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में चले जाइए वहां की स्थिति बिल्कुल विभिन्न है, हिमाचल उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश वहां बिल्कुल भिन्न है। तो हम लोग विविधताओं से भरा देश है, ऐसी हमारी परंपराओं में भी विविधता है, हर परंपरा में कृषि से संबंधित संस्कार हैं जो कि बताते हैं कि कैसे जमीन को, मिट्टी को संरक्षित किया जाए। हमारी मिट्टी संरक्षित नहीं हुई, नहीं रही, इसलिए पानी भी सुरक्षित नहीं रहा, हवा भी सुरक्षित नहीं रहा, ये जीवनदायिनी है, इनको हमने प्रदूषित किया है। कैसे आपकी आकांक्षा पूरी होगी कि जो हवा हम हर सेकंड सांस के रूप में अपने शरीर के अंदर डालते हैं, ईश्वर कहते हैं ना कि हमारे शरीर में ईश्वर है, ईश्वर कैसे खुश होंगे हमसे जब हम सही अन्न नहीं खा रहे हैं, सही पानी नहीं पी रहे हैं, विशुद्ध हवा का सेवन नहीं कर रहे हैं, ईश्वर खुश कैसे रह सकता हमसे, हमारे क्रियाकलापों से। तो आज इस सत्र में हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहें कि आप जिस रोल में हैं समाज में, उस रोल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लास्टिक का सेवन आज आप वादा करके जाइए, हमसे नहीं अपने से, अपने अंतः मन को वादा करिए कि आज से आप प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करेंगे या नहीं करेंगे, नल से खुला हुआ पानी बंद करेंगे, पानी कम से कम प्रयोग करेंगे, मिट्टी को प्रदूषित नहीं करेंगे, इसको आप अपने से वादा करिए, हमसे नहीं करिए। जितने बड़े स्टेक होल्डर आप हैं इस धरती पर उतने ही बड़े स्टेक होल्डर हम भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें हैं, सब लोग हैं बराबर के स्टेक होल्डर्स, सबका योगदान चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, एक मिसाल बनिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अध्यापक बनिए, उनको सिखाइए, उनको कहिए कम से कम पानी का प्रयोग करो, पानी गंदा मत करो, अनावश्यक दवाइयां मत खाओ, योग से परिचय कराइए उनका, शुद्ध खाने से अनुशासन के रूप में बताइए उनको क्या करना है, क्या कम से कम करना है, क्या ज्यादा ज्यादा करना है, ध्यान केंद्रित कैसे करना है, कैसे अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं अच्छा खाना खाकर। अनुशासन में जीवन व्यतीत करके, योग विद्या का अनुपालन करके कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, ताकि अपने जीवन में शरीर के अंदर कृषि रसायनों का प्रयोग न होने पाए। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत है। हम आप लोगों से एक कोट करें बताऊंगा मैं, एक वीडियो है और उसको आप ढूंढेंगे यूट्यूब पे तो हो सकता है मिल जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, बहुत ही पॉपुलर प्रधानमंत्री थे, हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, हमारे ख्याल से 51 या 52 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदुस्तान आजादी की मांग कर रहा है, लड़ाइयां लड़ रहा है, क्या हिंदुस्तान अपनी जनसंख्या को खाना खिला सकता है? आज हम ढेर सारे देशों को मुफ्त में अनाज भेज रहे हैं, हिंदुस्तान वहां पहुंचा है। एक दो बार विदेशों से कुछ विविधता आई थी पौधों की, गेहूं की खासतौर से, उसका प्रयोग हमने किया, नई नई प्रजातियां बनाई, उन बीजों को मल्टीप्लाई किया। आप ये समझ लीजिए कि गेहूं का एक दाना खेत में जब लगाया जाता है तो 100-125 दिनों में उससे 40 से 60 दाने बनते हैं, 40 से 60 गुना बढ़ता है। उन बीजों को मल्टीप्लाई किया, किसानों तक पहुंचाया, किसान हमारी मतलब वैज्ञानिकों की भाषा को समझा, विश्वास किया और अनाज का उत्पादन कहां पढ़ा दिया, हमारे पास रखने की जगह नहीं है। एक उदाहरण भी दूंगा यहां पे कि 2013 और 14 में भारत सरकार ने कहा कि हर फसल, गेहूं के लिए, धान के लिए, चावल के लिए, सब्जियों के लिए, खेती के हर फसलों के लिए कि 2050 तक, 2030 तक, 2020 तक कितना सब्जी की उत्पादकता उत्पादन चाहिए हमें देश को, हर फसल के लिए। सबका बोल सकता हूं, समय की कमी है, मैं 20 मिनट का समय दिया गया है, करीब 15 मिनट ले चुका हूं मैं। सब्जी का बताऊंगा कि 2030 तक हमें 79 मिलियन टन चाहिए, हमने 2018 में ही हासिल कर लिया, 12 साल पहले। गेहूं पिछले वर्ष हम लोगों ने 112 मिलियन टन पैदा किया, हमारी जरूरत है 100 मिलियन टन की। ऐसी ढेर सारी फसलों में हमारे पास अनाज रखने की जगह नहीं है, लेकिन हम बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि यह किसानों का विश्वास, देशी तकनीक और उसमें विज्ञान का प्रयोग, किसानों के साथ हाथ मिलाकर चलने का प्रयोग हुआ तो, लेकिन एक पक्ष हमारा कमजोर हो गया, मिट्टी को बर्बाद कर दिया। आज के इस सत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे जैव विविधता को हम लोगों ने विध्वंस किया है। हिंदुस्तान में एक नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, दिल्ली में है, उसकी शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में बिखरी हुई हैं। हर फसल की जिसकी खेती हम लोग करते हैं, चाहे हम लोग करते हैं या वन विभाग फॉरेस्ट के पौधों का करता है, जिन फसलों की खेती हिंदुस्तान में होती है या कुछ की नहीं भी होती है लेकिन वो उगाए जाते हैं, 4.5 लाख विविधताएं हमारे प्रयोगशाला में संचयित हैं भविष्य के लिए, जमीन के अंदर भी हैं, जमीन के ऊपर भी हैं, लेबोरेटरी में भी हैं, और एक ऐसे तापक्रम पर उनको रखा जाता है जो शून्य या शून्य से नीचे हैं। अब एक ऐसी तकनीकी विकसित की गई है, इसके लिए संसाधन बनाए जा रहे हैं ताकि -10 डिग्री सेल्सियस पे, शून्य से 10 डिग्री कम तापक्रम पे उसको बचा करके रखा जा सकता है प्रयोगशाला में, एक जगह नहीं, 3 जगह पे, हालांकि बहुत खर्चीला है लेकिन ये बताना आवश्यक है। कहां से आक्रमण हो जाए उसको नष्ट कर देते हैं, और ऐसी जो लड़ाइयां होती हैं तो ऐसे संसाधनों का विनाश करने के लिए दुश्मन सोचता है, इसलिए उसको बचा करके जमीन के अंदर ऐसी जगहों पे जहां पे उनकी पहुंच ना हो ऐसे किया जाता है। पूरी दुनिया में एक ऐसा बनाया गया है, कई कई दशकों पहले बनाया गया है, उत्तरी ध्रुव के आसपास जमीन से कई किलोमीटर नीचे कि एटॉमिक बम गिरेगा तब भी वो नष्ट नहीं होगा। ईश्वर ना करें अगर ऐसी स्थिति आती है तो जैव विविधता आवश्यक है। क्यों आवश्यक है हम आपको थोड़ी देर में बता करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। आम का देख लीजिए, आम का सीजन है इसलिए इसका उदाहरण दे रहा हूं। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां पे लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, दक्षिण भारत में बानेशन है, पीला वाला आम है, केसर है गुजरात में, अल्फांसो है महाराष्ट्र में, बंगाल में है, हर हर स्टेट में जहां पे आम की खेती होती है आम की विविधता है। लेकिन हर आम अलग अलग है, कहने के लिए नाम तो एक है लेकिन उसके अंदर जो जेनेटिक्स है, उसका जो जीन्स है, जो डीएनए है, सब एकदम अलग अलग है। मेरा बेटा 100% मेरी तरह नहीं है, उसमें उसकी माँ के भी गुण हैं। हमारी बेटी हमारी पत्नी की तरह 100% नहीं है, ये विविधता है। उसके जीन्स अलग हैं, हमारे भी जीन्स इसमें हैं, हमारी पत्नी के भी जीन्स इसमें हैं। तो ऐसे ही पौधों में होता है, हर पौधा हर वैरायटी एकदम अलग अलग है, यही विविधता है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हर पौधे की विशेषता होती है, हर प्रजाति की। गेहूं में मान लीजिए 500 वैरायटी हैं, उसकी हर वैरायटी एक दूसरे से अलग अलग है, किसी में प्रोटीन ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम है, कोई प्रजाति ऐसी उसमें कीड़ों का प्रकोप हो जाता है बड़े आसानी से, कुछ भी बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है, कुछ की उत्पादकता ज्यादा है, कुछ की उत्पादकता कम है। कैसे सिर्फ अच्छे अच्छे गुणों को एक प्रजातियों में लाया जाए, इसलिए हर वैरायटी के जीन्स वहां से एक में लाना पड़ेगा। इसलिए विविधता जरूरी है कि हम लोग जो ब्रीडिंग करते हैं पारंपरिक तरीके से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कि अगर एक पौधे की गुण उत्पादन अच्छा है लेकिन एक बीमारी इसमें होती है, लेकिन एक दूसरा पौधा है गेहूं का ही, इसमें उत्पादन कम है लेकिन इसमें बीमारी नहीं लगती है, तो जो बीमारी नहीं लगती है उसके डीएनए इसमें, इसके गुण, इन गुण को बीमारी न लगने वाला गुण हम इसमें लाते हैं। इसलिए हमें विविधता चाहिए। पूरी दुनिया में उत्पादन जो बढ़ा है नई नई प्रजातियों के विकास करने से ही हुआ है, और ये जो जैव विविधता है पौधों की उसकी वजह से हुआ है, भविष्य में ऐसा ही होगा। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनको वाइल्ड कहा जाता है, उनकी खेती नहीं होती है, उनको बीमारियों से लड़ने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो यही शक्ति हम जिनकी उत्पादकता अच्छी होती है उनमें डालने का प्रयास करते हैं। आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में हमें इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। विज्ञान के साधन से, जो कि तर्कसंगत है, जो कि एक तरीके से मैं कहूं कि हजारों साल से जो पौधों का उद्भव हुआ है इसी तरीके से हुआ है, वह खुले आसमान के नीचे हुआ है, मिट्टी में हुआ है, एनवायरमेंट में हुआ है। जो चीज हम विज्ञान लोग वैज्ञानिक प्रयोगशाला में करते हैं वो लेबोरेटरी में करते हैं, हालांकि कुदरत में भी ये चीज होती रही है, कोई नया हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो होता रहा है अनुभव के आधार पर उसी चीज को उसमें गतिशीलता देने के लिए प्रयोगशाला के अंदर किया जाता है। इसलिए हमें जैव विविधता की जरूरत है, उसके संरक्षण की। अगर आप लोगों को लगता है जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस फसल की खेती आप करते हैं, आपको आपको लगता है कि हमारे पास कोई विशेष पौधा है जो अन्य पौधों से भिन्न है, कृपया अपने नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय को बताएं। अपने अगर आईसीआर के संस्थान है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उसको बताएं, उससे शेयर करें, ताकि वो राष्ट्र की धरोहर है, उसका संरक्षण किया जा सकता है। फिर जरूरत आपका नाम, आपके नाम से संरक्षण होगा उसका, ताकि उसका प्रयोग भविष्य में हो सकता है अपने देश के लिए। हम दूसरे देशों से लेते भी हैं, दूसरे देशों से ऐसी जैव विविधता देते भी हैं। हमारे यहां विभिन्नताएं बहुत हैं, यूरोप की तुलना में, उत्तरी अमेरिका की तुलना में, ढेर सारे देशों की तुलना में हम बहुत बड़े देता रहे हैं, बहुत लोगों को दिए हैं। अंग्रेज हमारे यहां से चोरी करके ले जाते थे, अब वो देवता बनकर अपने पास कहते हैं नहीं ये हमारा है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे किताबों में लिखा गया है, वेदों में लिखा गया है, पौराणिक पुस्तकों में लिखा गया है, उसके आधार पर एक उदाहरण दूंगा मैं, है तो कई, वैसे नीम का पेटेंट अमेरिकन कंपनी ने कर लिया था अपने नाम पर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसका केस चला, कई वर्ष चला। तो उन लोगों ने पूछा कि क्या प्रूफ है आपके पास। अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं मैं आधे मिनट के अंदर। हम लोगों ने पौराणिक किताबों को ले जाकर के उसमें लिखी हुई चीजें थी ले जाकर के उनको दिखाया, हिंदुस्तान केस जीत गया। यह है जैव विविधता का पावर, क्योंकि इसमें व्यावसायिकता आ रही है। कहने तो कहने के लिए तो ढेर सारी चीजें हैं, समय उसके लिए चाहिए और बहुत ज्यादा समय चाहिए। आज 20 मिनट का समय मेरा समाप्त होता है। आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, एकदम रैप्ट अटेंशन के साथ आप सुनते हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे, आप अपने अंतर्मन से उसका मूल्यांकन करिएगा, अच्छा हो तो पालन करिएगा, आप खुश रहें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें थी। आपने सागर को गागर में समा करके हम सभी के बीच में बहुत सारी बातें सुनाई। ऐसे लगता था कि हम सुनते रहे, लेकिन समय की भी तो मर्यादा है, इसलिए फिर से आपको सुनने का एक अंदर मन में दृढ़ संकल्प रहता है कि फिर से टाइम मिले तो आपसे सुनेंगे। जैसे भाई ने जैव विविधता के बारे में सुनाया, ऐसे आप लोगों को पता होगा कई प्रकार की मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी, वन मिट्टी दिखाई देती है ऐसी मिट्टी, लेकिन अनेक प्रकार की मिट्टी है। जैसे हमारे मनुष्य जीवात्माएं प्राणी विविध है, वैसे मिट्टी में भी है। अभी हम अपने अगले अतिथि भ्राता पीयूष भाई, पीयूष कुमार शर्मा जी, निर्देशक राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान लखनऊ, उनको हम निवेदन करेंगे आप आकर के अपने मन की जो भी बातें हैं वह संरक्षण के बारे में सुनाएंगे।
मंचासीन लोगों को भी प्रणाम, आप सभी को भी प्रणाम। मुझे यहाँ एक मिनट में लूंगा, मुझे यहाँ आने का अवसर लाने वाले एलबी यादव साहब, डॉक्टर एलबी यादव हैं, लेकिन इसकी प्रेरणा पीछे काफी बद्री विशाल जी से मिली थी। जब हम लोग एक साथ निधि सारे कृषि भवन में कार्यरत थे, तो आपको भी धन्यवाद, आपकी प्रेरणा से, आप दोनों लोग की प्रेरणा से आज एक अच्छे स्थान पर पहुंचा हूं, सु अवसर प्राप्त हुआ इसका मुझे। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। पूर्व वक्ताओं ने आपको काफी कुछ बताया, जैसे आपने अभी पीछे कहा कि मिट्टी में भी बहुत कई तरह की मिट्टी होती है, विविधता होती है, और हर एक चीज की अपनी एक क्वालिटी होती है। जब हम लोग अपना पढ़ लिख रहे थे तो नई नई हरित क्रांति आई थी, और पहले हम लोग जिसे सनातन पद्धति कहते थे या जो बरसों से पद्धतियां चल रही थी उसका उपयोग करते थे। धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर और अन्य केमिकल्स का यूज होना शुरू हुआ, और आप देखिए हम लोगों ने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के रूप में इसका काफी प्रचार प्रसार किया, और ये नई पद्धति एक हमारे अपने लाइफ टाइम में सस्टेन नहीं कर सकी। 35-36 साल मेरे सर्विस को हो गए, जो केमिकल का यूज और फर्टिलाइजर का यूज था हम लोग की अपनी लाइफ में नहीं सस्टेन कर पाया, और अब हम लोग उल्टी तरफ जा रहे हैं। वही इसी तरह हमारी बहुत सारी परंपराएं थी। हमने देखा जब हम लोग पल बड़े हो रहे थे तो एक वो दौर था कि हम मतलब सामान्य उसमें था कि अपनी संस्कृति को निकृष्ट समझ करके विदेशी संस्कृति को और उसका अंधा अनुकरण करने की एक माहौल था। कभी लोग अंग्रेजी बोलना पसंद करते थे, हिंदी बोलते ही नहीं थे, हिंसा आती थी। उत्तरोत्तर जब हम लोग को बुद्धि आई तब हम लोग अपनी मातृभाषा बोलना में पसंद करते हैं, नहीं बोलते अंग्रेजी, जरूरत हो तभी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो वो एक ऐसा माहौल बना देश में कि धीरे धीरे हम अपनी अच्छी अच्छी चीजों को छोड़ करके रद्दी चीजें लेने लगे। जैसे मैं सिर्फ उदाहरण दूंगा, मेरे वक्ताओं ने पहले बहुत ज्ञान दिया है, जैसे आप देखिए हमारे यहाँ की जो देसी गाय है उसका दूध अमृत होता है, सच में अमृत होता है, क्योंकि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा वो है जिसके कारण वो अमृत पैदा होता है। फॉरेन की जो गाय है टाइप 2 डायबिटीज से लिंक्ड रहती है, हमारे उसमें नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं यूरिन और वो सब पे जब तक प्रूफ ना हो जाए तब तक नहीं, लेकिन सच में वो चीज अमृत थी। तो हम लोग अपनी अच्छी चीजों को छोड़ करके चले गए। जब हम लोग सर्विस में थे और पढ़ते भी थे तब ये था कि हर जगह केमिकल फर्टिलाइजर के साथ गोबर की खाद बताई जाती थी। पुरानी किताबें उठाकर देख लीजिए, हम लोगों ने अपने समय में वो पढ़ा है। और उत्तरोत्तर हुआ क्या, बायो फर्टिलाइजर या मतलब गोबर की खाद सब भूल गए, खाली रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा। रासायनिक एक चीज होती, जैसे किसी चीज की कमी थी, 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल सस्टेन किया वो फर्टिलाइजर आपने डाला, फर्टिलाइजर का रिस्पांस हुआ। अब उसके धीरे धीरे हजार्स बढ़े तो आपकी जमीन की पोरोसिटी कम हुई तो उसमें बायोडायनेमिक्स डिस्टर्ब हुई, ऑर्गेनिक कंटेंट कम हुआ, धीरे धीरे आपका सॉयल बीमार हो गया। अब आप समानता जैसे जो बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजर, उससे आदमी दो दो गुना डीएपी डाल रहा है तो क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा लास्ट ईयर के बराबर, बढ़ना तो छोड़ दीजिए, अत हो गई उसकी जमीन, अब उसको नहीं ले रही है। तो कहीं हमको अब जब मोटा सिद्धांत है, जब तक ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होगा आप कुछ भी डालिए उसका रिस्पॉन्स बहुत नेग्लिजिबल होगा। जमीन का ऑर्गेनिक कंटेंट हम लोग जैसा कहते हैं कम से कम 0.8% होना चाहिए सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से, हमारे यूपी के लिए 0.2-0.1 यहाँ पहुंच रहा है ऑर्गेनिक कंटेंट। तो आप जो डालोगे वो होगा ही नहीं, वो उसको वो फिक्स हो जाएगा जाके जमीन में, वो लेगा ही नहीं, मट्टी बीमार की, पानी को बीमार किया, पर्यावरण को बीमार किया, सब चीज, समय पे ना बारिश होती है, समय पे मतलब सब चीज डिस्टर्ब करते चले गए ह्यूमन, और बहुत कुछ हम लोगों ने अपने लालच के लिए बर्बाद कर दिया। लालच कैसा, हमको सॉर्टेड सीमन चाहिए सरकार, हम एक मेल प्रोजनी नहीं पाल सकते, हमको फीमेल प्रोजनी चाहिए या वो प्रोजनी चाहिए जिसका हमारे लिए कमर्शियल यूज है। हम बैल नहीं अफोर्ड कर सकते, गाय हमको चाहिए, मतलब ये लालच की पराकाष्ठा है। जैसे जैसे हम लोग उससे दूर हुए, घर के बूढ़े माँ बाप को भी घर में तवज्जो मिलनी बंद हो गई, भूल गए अपनी संस्कृति। तो फिर से आपको अपनी संस्कृति की ओर जाना है, बैलेंस करके जाना है। खाद्यान्न हम लोग बहुत पैदा कर रहे हैं, सरप्लस भी है, डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे पूर्वक्ता साहब ने, और विद्वान है, वाइस चांसलर है, काफी रिसर्च उनके अंडर में होती रहती है, तो उनको काफी कुछ इस तरह का ज्ञान होगा है। तो हम लोग सब चीज धीरे धीरे अच्छी अच्छी चीजें छोड़ते चले गए। तो अब जो चीजें चीजों को बिगाड़ती हैं वही उसका करेक्टिव मेजर भी होता है। सॉइल को ठीक कीजिए, उसके अंदर का बायोडायनेमिक्स ठीक होगा तो आपका धीरे धीरे पर्यावरण ठीक होगा, पर्यावरण ठीक होगा तो जो जैसे आप देखिए जो हम लोग खाते पीते हैं उससे अनएक्सपेक्टेड बीमारियां हो जा रही हैं। हम लोग की लॉन्जिविटी भले बढ़ गई हो लेकिन लाइफ स्पैन भले बढ़ा हो लेकिन बीमारी वाला लाइफ स्पैन बढ़ा है। हमने अपने ऊपर की पीढ़ियों को देखा है 70-70-80-80 साल तक उनके दांत नहीं टूटते थे, ऐसे लोगों को हमने देखा है। और अब ऐसे लोगों को हम 60 साल 55 साल पे बीपी शुगर और जाने कौन कौन सी बीमारी लेके घूमते हैं, लेकिन फिर भी पीछे की लाइफ स्टाइल बदली। तो अब आप सोचिए मेरे दो स्टंट सन 11 में लगे थे, 7 साल स्टंट की लाइफ होती है, अगर हमने लाइफ स्टाइल को न बदला होता तो आज 25 है, उसके बाद मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। पीछे की पद्धतियों में गए, खान पान को सुधारा, हम लोग पहले मोटा अनाज खाते थे, बहुत न्यूट्रिशियस होता था, भाग करके गेहूं और धान पर आ गए, खाया ठीक है, पेट भरा लोगों का, लेकिन उससे जो हम लोगों को शरीर को जो बल मिलता था या शरीर को जो डिफरेंट तत्व चाहिए होते थे, 19 एलिमेंट चाहिए होते हैं, वो मिलते थे, स्वस्थ रहते थे, अब वो नहीं मिलते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खाते हैं और बच्चों को तो देखिए वो तो पूरा फास्ट फूड पे ही जाते हैं। फास्ट फूड कितना हानिकारक होता है कहने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ऐसे ड्रिंक्स आ गए हैं, जोश और क्या क्या आता है देखते हैं हम उसमें, वो अफीम का उसमें होता है, बच्चे पी रहे हैं, पता नहीं रोग क्यों नहीं लगती है इनपे। तो सॉइल को जो फैक्टर बिगाड़ते हैं वही उसको सुधारते भी हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए पहले हम लोगों ने 40-50 साल तक बहुत काम किया, बहुत सा ऐसा लैंड जो खेती के योग्य नहीं था, कम से कम यूपी को मैं जानता हूं, उसको खेती के योग्य बनाया गया। अगर उसमें स्लोप था, स्लोप को स्टेयर क्रॉपिंग कर करके उसमें जो है इरोजन को रोका गया और खेती के योग्य उसको बनाया गया, जहां खेती नहीं होती थी। अब खेती के लिए अब लगभग हमको लगता है अब एरिया और बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। अब हम या तो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और या प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब देखिए, जैसे अभी हम सुबह देख रहे थे, सुबह हमने कहा भी अपने साथियों से, बचपन में जो हम सब्जी का हमारे टेस्ट डेवलप था वो अब हमको नहीं मिलता है। आज हमने आपके यहाँ टमाटर की चटनी खाई और हमको वो पुराना टमाटर याद आ गया, लिकोपिन उसमें था, लिकोपिन ही उसका मेन कंटेंट होता है, लिकोपिन के कंटेंट का हमको आज याद आ गया, मुझे बहुत टेस्टी लगा। अब सारा फर्टिलाइजर में साइज बढ़ गई टमाटर की, प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन उसका मूल तत्व गायब हो गया। तो ऐसा विकास जो आपका जो चीजें जिससे मिलती थी वो गायब हो जाए, और आप ठीक है साइज बढ़ गई, प्रोडक्शन भी बढ़ गया, लेकिन उसने आपको दिया क्या है? क्या हेल्दी लाइफ दी? नहीं दी। और कल परसों कल उस पे बात हो रही थी कि जो संकल्प देते हैं पौधों को, तो मेरे किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे संभव है, तो मैंने कहा ऐसे बिल्कुल 100% संभव है। मैं ऐसे ही जो मन में आ रहा बोल रहा हूं, मैं बहुत तैयारी करके नहीं आया, 5-7 मिनट में खत्म कर। मैंने कहा मैं जब बीमार हुआ, मेरे एक्सीडेंट में नर्व टूट गई थी, सेंसरी नर्व, डॉक्टर ने कहा 2 इंच इसकी मैक्सिमम ग्रोथ है, 1 हफ्ते में आप घुटने से लेके एड़ी तक जोड़ लो, जितना इंच होगा उतना आपका टाइम का 6 महीना लग जाएगा। लेकिन उस समय इतनी जिजीविषा थी कि हम कैसे बेड पे पड़े हुए हैं, आपको बताते हैं 2 महीने 2 और 4 दिन में मेरा फुट सेंसरी नर्व जुड़ी और हमारा फुट जो है जो उठता नहीं था वो उठने लगा। तो ये संकल्प शक्ति है। कभी कभी आप देखिए, आप अगर गहन कोई चीज सोचते सोचते अगर गहन चिंतन में चले जाएं, तो पूरी कुदरत पूरी कायनात आपकी मदद करती है उस चीज को करने में। संकल्प शक्ति वो है। और बहुत जब हम पहले बचपन की बात बताते हैं, जेसी बसु का नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत पहले ये म्यूजिक का प्रयोग किया था प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। भूल गए देखो हम लोग, इधर अंधी दौड़ में हम लोग ये सब चीजें भूल गए। कब का मेरे ख्याल से 100 साल पहले की बात होगी, उससे ज्यादा की, जेसी बसु की। उन्होंने तब वो प्रयोग किए थे कि पेड़ों में ग्रोथ अच्छी हुई और एनिमल्स का जो प्रोडक्ट था वो अच्छा हुआ म्यूजिक सुन करके। वो चीजें हम लोग भूल गए। तो ये संकल्प शक्ति है। जैसा बात आप कल एक फिगर दिखा रहे थे, रॉक म्यूजिक में पेड़ का कुछ था डिस्टॉर्शन और क्लासिकल म्यूजिक का कुछ और था, तो ये सब चीजें है, धीरे धीरे हम लोग भूल गए जो पहले हमारी परंपरा में था। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि वाटर में संकल्प शक्ति होती है, जो हम लोग पहले से जानते थे, भूल गए, सब चीजें भूल गए, पूरा फॉरेन कल्चर ले लिया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उधर जाना होगा। आप डाइवर्सिटी पे देखिए, हम छोटे पे आप लोग बहुतों को याद होगा, बेसरम का पौधा होता था, बेया कहलाता था, बैगनी फूल होता था, ऐसे ही उगा रहता था, अभी दिखता है कहीं, कौवा दिखता है कहीं, बढ़िया। हम लोगों ने अल्टरनेट निकाल लिया, पितरों को खाना खिलाना, लोग कौवा लेके आते हैं पकड़ के, एक बाइट कराइए 50 रुपए दीजिए, कौवा गायब, चील गायब, कितनी चीजें गायब हो गई, क्यों? केमिकल के प्रयोग से। जमीन गंदी हुई, पानी गंदा हुआ, उसको ये सेंसिटिव, हम लोगों का शरीर बड़ा होता है, कम उतना सेंसिटिव नहीं होता, मछली और क्या क्या चीजें ये बहुत सेंसिटिव होती है, पेड़ ये पक्षी बहुत सेंसिटिव होते हैं, हम लोग कोई प्रयोग करते, देखिए पहले एक HGCL आता था, शायद कैलोमेल क्या कहते थे उसको, वो बेट के रूप में यूज होता था मछली पकड़ने के लिए। बाद में वो पता लगा कि वो आपके नर्व उसमें जाके नर्वस सिस्टम में जमा होता है। जापान में बंद कर दिया, मेरे ख्याल से कई दशक पहले बंद हो गया वो बेट के रूप में उसका प्रयोग करना। तो चीज बढ़िया लगी, अडॉप्ट कर लो। बाद में हमारे यहाँ तो कोई रिसर्च बहुत ज्यादा होती नहीं है इन सब चीजों पे, और तो जब रिसर्च होती कहीं पता लगता है। अब कितने केमिकल बंद हैं आज, अब हर साल दो चार साल में काश केमिकल बंद हो जाते हैं, लेकिन आप गांव में खोजो, मेरे ख्याल से कई दशक पहले लिंडेन और BSC ये सब बंद हो गई थी। आज भी आप गांव देहात में खोजो, आपको BSC और लिंडेन मिल जाएगी, कई दशक पहले बंद हो गई। तो हम लोग किधर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फिर से लौट कर आना पड़ेगा अपनी संस्कृति की ओर और अपने कल्चर की ओर। ठीक है, तभी आपका भला होगा। आप देख रहे हैं तो मैं जान रहा हूं कि मेरा समय समाप्त हो रहा है। सभी को पुनः पुनः धन्यवाद, आपने पेशेंसली मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच।
ओम शांति भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खड़े होकर के एक बार ताली बजा देंगे, जो नींद में है वो भी खड़े हो जाइए और जोर से ताली बजा दीजिए, और जोर से, और जोर से। ओके, थैंक यू। और एक बार हफ दीजिए सब, जोर से, एक दूसरे के सामने देख करके, बस बैठ जाइए, थैंक यू। टाइम तो बहुत जा रहा है फिर भी, क्योंकि कई लोग समय ऐसा है इसलिए थोड़े नींद में चले गए हैं। भाई ने बहुत अच्छा कहा कि सारी चीजें हमारी चली गई हैं, डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए हुए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास से आने वाले पल को खूबसूरत बना सकते हैं। तो हम सब यहाँ से हौसले लेकर के जाएंगे कि हमारे संकल्प में शक्ति है। और आज सुबह का जो सेशन आपने सुना आत्मा के बारे में, वो भी एक संकल्प शक्ति है कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो उसमें एक शक्ति है और वो हम महसूस कर सकते हैं। अभी हम हमारे ब्रह्मा कुमार पहलाद भाई को नम्र निवेदन करेंगे। वो आत्मा योजना टॉक से आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मॉडल यहाँ बनाया हुआ है, और वो पूर्व SMS के अधिकारी है। तो प्रहलाद भाई जी।
ओम शांति। आप सभी ज्ञान सागर ज्ञान सरोवर परिसर में सुंदर प्रकृति की गोद में और प्रकृति पति परमात्मा पिता के सानिध्य में उपस्थित इस कार्यक्रम के दौरान हमारे मध्य मंच आसीन आदरणीय सभी और सम्मुख सम्मानीय सभी, खास अन्नदाता किसानों के सहयोगी, कृषि वैज्ञानिक जन, कृषि अधिकारी गण और कई NGO अधिकारी लोग साथ में यहां पहुंचे वो भाग्यवान अन्नदाता भारत किसान किसान, हम सब आप सबको इस एक राजयोगी आध्यात्मिक किसान का तहे दिल से सत सत नमन प्रणाम। मीठे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे अनुभव के लिए यहां 10 मिनट दिया गया है। मैं सार में जो आज का विषय है मृदा पर्यावरण और जैव विविधता में का संरक्षण, एक चित्र आपने देखा होगा और यहां प्रैक्टिकल आप अनुभव भी कर रहे होंगे कि यहां इसका प्रैक्टिकल प्रूफ है कि हमारी प्रकृति कितनी सुंदर आपको अनुभव हो रही है और उस प्रकृति गोद में आप भी खुद सुख शांति का अनुभव कर रहे होंगे। तो यहां जो सभी समस्याओं का जिक्र किया गया और आज संसार की या परिवार समाज की समस्त समस्या और परिस्थितियों का अगर एक बात से हम कारण कहें तो वो है केमिकल खेती। चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण की बात हो, हवा प्रदूषण की बात हो, प्रकृति के पांचों जो तत्व हैं उनके प्रदूषण की बात हो, या मानव मन के प्रदूषण की बात हो, तो यहां सार गर्भित यही मैं कहना चाहूंगा कि मेरे को यहां 28 वर्ष पहले इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर सिद्धार्थ से जुड़ाव हुआ। वो तीन दिन जो आपको मिला है ऐसा ही सुअवसर मुझे भी मिला था, लेकिन इस तीन दिन का सुअवसर जो मेरे लिए एक नए जीवन का एक आयाम बन गया, जीवन जीने की कला समझ में आई और एक मूल्य निष्ठ, इसके पहले जो मेरा जीवन था वो मूल्यहीन था, लेकिन 28 वर्ष के इस राजयोग शिक्षा अभ्यास से जीवन में जो उस रूहानी कहें कि एक ऐसे जादूगर जो बिगड़ी को बनाने वाला है, संसार भी आज हम देखेंगे नजर डालेंगे कि संसार की भी हालत बिगड़ चुकी है, लेकिन वो बिगड़ी को बनाने वाला पुनः आया है और उसका सानिध्य हमने मन बुद्धि से उसको संबंध जोड़कर स्वयं के जीवन में भी उसका प्रयोग किया है और खेती में भी उसका प्रयोग किया है और हमने पाया है कि हमारे जीवन से एक किसान के जीवन से, क्योंकि आज मैं सार गर्भित एक बात आपको बताना चाहूंगा कि भगवान का जो बिगड़ी से सुंदर संसार बनाने का कर्तव्य वो कर रहा है, वो हमारे अन्नदाता जगत तात किसानों के बिना असंभव है। परमात्मा की अभी सुंदर योजना है इस दुखी अशांत और जो है पतित संसार को पुनः फिर से पावन सुख शांतिमय संसार बनाने की, जिसको हम स्वर्णिम भारत कहते हैं। तो स्वर्णिम भारत लाने का आधार और इन तीनों चीजों में, जैव विविधता में, पर्यावरण में और मृदा में जो समन्वय लाने का आधार, वह शाश्वत योगी खेती। तो इस शाश्वत योगी खेती का प्रयोग हमने प्रैक्टिकल किया है। मैंने यहां पर स्वयं की सत्य पहचान मिली, जो आपको भी आज शायद मिली, स्वयं सत्य पहचान दाता उस परमात्मा जो सबको देने वाला दाता, उसकी पहचान मिली, साथ में कर्म फिलोसॉफी का यथार्थ ज्ञान मिला। मेरे भाइयों में कृषि क्षेत्र में किसानों के बीच में था, लेकिन यहां जब कर्म का सिद्धांत समझ में आया तो मुझे समझ में आया कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो कितना संसार परिवार समाज के लिए अहितकारी है। मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ली और इस पर काम किया कि श्रेष्ठ कर्मकर्ता में आत्मा कैसे मैं उस परमात्मा पिता का इस सुंदर सृष्टि रचना में एक राइट हैंड सहयोगी बनूं, निमित्त बनूं। परमात्मा ने जाने कौन सी विशेषता मुझ आत्मा में देखी और उन्होंने हमें यूज किया और यूज करते करते आज परमात्मा ने अपने ही घर में, अपनी ही शाश्वत योगी खेती तपोवन में इस सेवा का सुंदर अवसर हमें प्रदान किया और उस सेवा से आज सभी जो है अनुभव ले रहे हैं। आज एक कृषि अधिकारी भी उस ओर अग्रसर मानता है कि यही आने वाले समय में योग्य है और यही कृषि वैज्ञानिक भी सोच रहा है। तो मेरा इतना कहना आपके बीच में होगा कि आप यहां जो आए हैं आप साधारण नहीं हैं। आप भले ही अपने आप को साधारण माने, लेकिन परमात्मा पिता की नजर में आप साधारण नहीं हैं, महान हैं, विशेष हैं। लेकिन उस विशेषता और महानता को एक सुंदर श्रेष्ठ संसार निर्माण में आपको प्रयोग करना है और उसका प्रयोग की विधि है ये राजयोग का अभ्यास, परमात्मा द्वारा दी गई सत्य ज्ञान शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि संसार में एक पिता के कार्य में हम बच्चे ही मददगार नहीं बनेंगे तो भला और कौन बनेगा। परमात्मा हमारे ही लिए सुंदर श्रेष्ठ संसार का निर्माण कर रहा है तो हमको मदद जरूर बननी, मददगार जरूर बनना है, उसमें हमें अपना एक यहाँ संकल्प लेके जाना है 3 दिन के ज्ञान युक्त सार से कि हमें कहीं न कहीं सहयोगी जरूर बनना है। तो वो सहयोगी जब हम बनेंगे तो हम योगी सहज बन जाएंगे, और योगी जब बनेंगे, हमने यहाँ सार पाया है कि जब हमारे जीवन में सत्यता और सत्य से प्रेम होता है तो जीवन में आती है पवित्रता, और पवित्रता जब जीवन में आती है तो सुख शांति हमें आंतरिक आती है। और आज संसार में इस आंतरिक सुख शांति के ही भिखारी हैं। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता के समन्वय को यहाँ समझ के जाना और इसका प्रयोग खुद के जीवन में भी करना और कर्म क्षेत्र पर भी करना, आप जरूर प्यारे पिता परमात्मा के राइट हैंड बनेंगे और हम सब मिलकर फिर से वो सुंदर श्रेष्ठ विश्व का निर्माण करेंगे। अनुभव यही कहता है कि परमात्मा ने अभी सुंदर श्रेष्ठ संसार का निर्माण करने में जो हमारा एक थीम दी है कि हम संस्कार परिवर्तन से संसार का परिवर्तन होना है। संस्कार परिवर्तन का जो आधार है वो है हमारे मन के श्रेष्ठ राजयोगी शिक्षा अनुरूप संकल्प विचार और शुद्ध आहार, सात्विक आहार। जब हमारा शुद्ध मन से शुद्ध आहार तैयार लेते हैं, शुद्ध आहार हम लेते हैं, तो शुद्ध मन से तैयार किया गया शुद्ध आहार ही हमारे को संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कराता है। और संपूर्ण स्वास्थ्य किसे कहेंगे, जिसका मन, जिस आत्मा का मन निर्मल हो, जिसमें नकारात्मक कोई कुभावनाएं न हो और सर्व के प्रति, स्वयं के प्रति कल्याण की भावना हो, ऐसे मन को हम सुमन कहेंगे। और उस सम्मन से अगर हम किसान को ये बात हम बताएंगे, उसको रियलाइज हो जाएगा, तो सुमन शुद्ध मन से जब वो आहार तैयार करेगा तो उस आहार से शुद्ध सात्विक जो आहार मिलेगा उससे सबका, केवल किसान का ही नहीं, सबका स्वस्थ जीवन तैयार होगा। और ऐसे कर्म और व्यवहार और संस्कार परिवर्तन से पुनः संसार का परिवर्तन होना निश्चित है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा। एक दृष्टांत है कि एक बार आग लगी, लेकिन कस्बे के पास में जंगल था, जंगल में आग लगी, उसमें चिड़िया के घोंसले भी थे, बच्चे भी थे, और वो हवा का रुख जो है वो कस्बे की तरफ था। सब कस्बा वालों में ये बात जगी कि ये तो सबका नुकसान होगा, हमारा सब नुकसान हो जाएगा, जानवर का भी घर तहस महस हो जाएंगे। तो सबने एक संकल्प लिया, जो भी पानी का साधन था, सरोवर था चाहे कुंव बावड़ी था, सबने संगठित होकर उसको आग बुझाने की कोशिश की, प्रयास किया। और उसी जंगल में जो चिड़िया थी उसने भी अपने बच्चे के बचाव के लिए प्रयास किया। तो चिड़िया सरोवर में जाती, चोंच में पानी भरकर लाती और उस जलते हुए अग्नि से जला हुआ जंगल था उस पर वो पानी डालती। बड़े बड़े जो वहां शेर भालू थे उनके विचार में आया और उस चिड़िया के इस पुरुषार्थ को देखकर वो हंसने लगे, एरी चिड़िया तू पागल तो नहीं हो गई है, तेरी बूंद बूंद के इससे क्या ये आग बुझ जाएगी। लेकिन उस चिड़िया ने अपनी विवेकपूर्ण बात कही कि हाँ, मैं अवश्य जानती हूँ कि मेरी बूंद बूंद एकमात्र से ये आग नहीं बुझने वाली, लेकिन सबके सहयोग से जब ये आग बुझेगी तो बुझाने वालों में मेरा भी नाम आए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये संसार में विकारों की, बुराइयों की जो अग्नि लगी हुई है, संसार जो हमारा अशुद्ध हो चुका है, परिवार संसार संस्कार अशुद्ध हो गया है, उसमें हम सब चिड़िया जैसा क्या संकल्प नहीं ले सकते? अगर हमारा यहाँ से आध्यात्मिकता को साथ में जीवन जीने, अगर ये संकल्प आकर लेकर जाते हैं, तो कौन कौन ऐसा प्रयास में है जो चिड़िया जैसा अपना सहयोग दे सकते हैं? जरा हाथ खड़ा करके दिखाएंगे। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा, आगे के सत्रों में पूरा 5 मिनट पहले यहाँ आने का कष्ट करें, समय बहुत बड़ा कीमती है और समय का ही मुझे इशारा मिल गया है। मैं अपनी बात पूरी करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
शांति, बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद भाई का। उनके लिए मैं कह सकती हूँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो ये कोशिश थी, आप सब हमारे यहाँ तपोवन है, आरोग्यवन है। आरोग्यवन की जो मिट्टी थी उसकी पीएच बहुत हाई थी, पानी भी मना उसका टीडीएस भी हाई था। वैज्ञानिकों ने ऐसे कहा ये बगायती खेती संभव है, लेकिन यहाँ कुछ और नहीं हो सकता। परंतु योग के प्रयोग से वहाँ शाश्वत खेती की। एक वर्ष में 200 मैट्रिक टन आलू उत्पादित किया एक वर्ष में, और दूसरे वर्ष में 250 आलू वहाँ उत्पादित हुआ है। आप देखना वहाँ जाके। और ये पहलाद भाई ने मॉडल बनाया है, क्योंकि उनका टाइम थोड़ा कम पड़ा। ये मॉडल भी आप देखना, वहाँ इतना अच्छा मॉडल बना है कि वो मॉडल देख करके कई वैज्ञानिक ऐसे कहते हैं कि ये हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा काम यहाँ का है। ये संकल्प शक्ति और ये परमात्म शक्ति, ये दोनों यहाँ हम देख सकते हैं। अब हमारे समय जा रहा है। आज के जो हमारी अध्यक्षा हमारी आदरणीय लक्ष्मी बहन जी है, उनको मैं निवेदन करती हूँ। ब्राह्मण जीवन में आप आदरणीय, देवी गुणों में आदर्शनीय, पुरुषार्थ में मार्गदर्शनीय, ऐसे हमारी दीदी लक्ष्मी बहन जी को आप अभी सुनेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव एवं सभा में उपस्थित कृषि एवं ग्राम विकास के बहुत ही विद्वान साइंसदान, बहुत सारे हमारे ऐसे सभी सभा में जो बैठे हैं, आज के विषय पर काफी चिंतन हो चुका है, मृदा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता। बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत स्पष्टता से इस विषय को समझाया है, और आप सब भी इस विषय के बहुत मर्मज्ञ हैं, सभी जानकार हैं। मैं केवल एक दो बात कहना चाहूंगी। हम सभी जानते बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ जानते हैं कि प्रकृति को हमने कितना उसका शोषण किया है और कितना उसे दूषित किया है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें उस पर आना पड़ेगा। मुझे एक वृत्तांत याद आता है कि जब दुर्योधन बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था, तो श्री कृष्ण ने उससे एक प्रश्न पूछा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, इतना छल, इतना कपट, इतनी हत्याएं, सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो उसने एक जवाब दिया था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर धर्म पर चलने की शक्ति नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर धर्म अधर्म को छोड़ने की ताकत नहीं है। और आगे फिर वो कहता है कि कोई मेरे अंदर बैठा है, केनापि देवेन हृदय स्थितेन, मेरे हृदय में कोई बैठा है, वो जैसे जैसे मुझे प्रेरित करता है मैं वैसे वैसे कर रहा हूं। वहां भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया उसे। लेकिन यही प्रश्न गीता में अर्जुन भी पूछता है कि हे भगवान, मनुष्य इतने पाप क्यों कर रहा है, प्रकृति को प्रदूषित क्यों कर रहा है, इतने अत्याचार क्यों कर रहा है। तो वहां भगवान उसे उत्तर देते हैं कि मनुष्य ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि उसके हृदय में तीन महाशत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध और लोभ, जो नरक के द्वार हैं। और सचमुच में महात्मा गांधी जी ने भी प्रकृति के लिए कहा, मदर अर्थ हैज सफिशियंट फॉर मैंस नीड बट नॉट फॉर मैंस ग्रीड। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारी धरती माँ के पास सब कुछ है और सब कुछ दे सकती है पूरी मानवता को, लेकिन लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो हम यहां आते हैं कि उस लालच की पूर्ति के लिए क्या किया जाए, क्योंकि जो ये सोचते हैं एक किले में और ज्यादा केमिकल्स और ज्यादा पेस्टिसाइड और ज्यादा फसल मिलेगी और ज्यादा फसल मिलेगी, और उस और ज्यादा के चक्कर में धरती मां को जहर पिला पिला कर बंजर कर दिया है। उस पर अंकुश कौन लगाए, वो जो मन की वृत्ति है उसे कैसे परिवर्तन किया जाए। और उसके लिए ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो बार बार आपको ये प्रेरणा दी जा रही है कि मेडिटेशन सीखो, भगवान को याद करो, मन को उसमें लगाओ, और एक बहुत सुंदर विधि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निकाली गई है, शाश्वत योगिक खेती, जो एक बहुत बड़ा समाधान है इन सारी समस्याओं का, चाहे वो पर्यावरण है, चाहे वो मिट्टी की बात है, चाहे वो जीव विविधता की बात है। क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक खाद जो खुद बनाते हैं यहाँ भाई बहने मॉडल के अंदर भी, तो वहां कैसे उनका संरक्षण होता है प्रैक्टिकल में, तो उसके लिए जो लालच की वृत्ति है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ जो बार बार स्पिरिचुअलिटी शब्द प्रयोग किया जाता है, तो कई कुछ भाई बहने सोचते हैं कि शायद ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल नहीं है। लेकिन स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी किससे बनता है, स्पिरिट, हम सबके अंदर एक चेतना है, एक ज्योति है, एक आत्मा है जिसे स्पिरिट कहते हैं, और उस स्पिरिट के अंदर ही जो मूल गुण है ईश्वर के वो समाए हुए हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी को जीवन में लाना माना क्या है कि अपने जीवन के अंदर अपनी स्पिरिट के साथ जीवन जीना, कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मुझे सबको शांति देनी है, मैं प्रेम के सागर ईश्वर की संतान हूं, मुझे सबको प्रेम बांटना है, और सब में प्रकृति भी है, सब में जीव जंतु भी हैं, सब में हर मानव भी है, सबके प्रति वो प्रेम तब पैदा होगा जब हम उस स्पिरिट को पहचानेंगे और अपने मन को उस परम पवित्र ईश्वर के साथ जोड़ेंगे। और उस स्पिरिट के साथ जब हम काम करेंगे दिन भर में, अगर आप किसान हैं तो खेती के अंदर हम देखते हैं हमारे हजारों किसान भाई उस परम पिता परमात्मा को साथ लेकर कैसे खेती करते हैं, प्रकृति से, पौधों से बातें करते हैं, उनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, तो वो जो अंदर का प्यार है वो परमात्मा की याद से पैदा होगा। और वो प्यार जब जीवन में आता है तो वहां संतुष्टता आती है, वहां हमारी लालच की जो वृत्ति है उसके ऊपर अंकुश लगता है, और वहां हम थोड़े में भी प्रसन्न रहना सीख जाते हैं। तो इसलिए राजयोग का अभ्यास सबके लिए जरूरी है, ये व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि वो तो सबसे बड़ी विधि है ही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस प्रकृति पर्यावरण को ठीक करने के लिए मैं क्या सहयोग दे सकता हूँ। हर एक को केवल अपने लिए सोचना है, जिसका थोड़ा सा जिक्र हमारे भाई जी ने भी किया, आनंद भाई जी ने, तो उसी को मैं कहना चाहूंगी कि हम सनातन संस्कृति को लाना चाहते हैं, हम सभी भारतवासी अपनी प्राचीन सनातन संस्कृति, तो उसका जो एक एक व्यक्ति जो है, हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, 1/140 करोड़ भारत मैं हूँ, 1/140 करोड़ राम राज्य बनाने का हिस्सेदार मैं हूँ, आप सब हैं प्रत्येक, अगर हम अपने हिस्से की जिम्मेवारी ले लें कि मुझे तो उस सनातन संस्कृति को ही लाना है, मुझे तो उन मूल्यों को ही फिर से लाना है जहां प्रकृति का इतना पोषण था। श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन को अगर हम देखें तो श्री कृष्ण हमें सिखा गए, एक संदेश दे गए, वो उन्होंने पूरा बचपन जंगलों में गुजारा, गौ माता के साथ गुजारा, बछड़ों के साथ गुजारा, वो तो एक राजकुमार थे, नंद बाबा के पुत्र थे, गोकुल के राजकुमार थे, उन्हें क्या जरूरत थी धूल मिट्टी में जाने की, वो आने वाली मानवता को पाठ पढ़ा के गए कि मिट्टी के साथ रहना, गौ माता के साथ रहना, प्रकृति की गोदी में रहना कितना जरूरी है, पूरा बचपन बिता के हमें संदेश दे गए। दूसरी तरफ अगर हम श्री राम को देखें तो उन्होंने अपनी जवानी युवावस्था जंगलों में बिताई और वो भी हमें एक संदेश दे करके गए कि अगर आसुरियत को खत्म करना है, अगर नेगेटिविटी को खत्म करना है, प्रकृति को अच्छा रखना है, दूषित वृत्तियों को खत्म करना है तो प्रकृति, जंगल, पेड़ पौधे, उनके साथ प्रेम रखना और वहां रह करके भी जीवन की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। क्योंकि श्री राम जंगल में जाने से पहले केवल एक राजकुमार थे, युवा अपने जो अयोध्या थी उसके आने वाले भविष्य के राजा थे केवल, लेकिन जब जो जंगल से वापस होकर के आए तो वो भगवान श्री राम कहलाए। तो इस प्रकार से ये प्रकृति हमें संदेश देती है, श्री राम और श्री कृष्ण जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो हमें संदेश देती है कि प्रकृति के साथ जुड़ना, उससे प्रेम करना कितना जरूरी है। और मनुष्य की ये लालच की जो वृत्ति है, जो नीड और ग्रीड का अंतर है, वो केवल आध्यात्मिकता को अपनाने से होता है। और ये आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने के लिए घर बार, परिवार, संसार और जिम्मेवारियों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी हैं वहां रहते हुए केवल 10 मिनट प्रतिदिन ये चिंतन कर ले कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और इस प्रकृति के साथ मेरा कितना गहरा रिश्ता है, उसको समझ करके चलें और कुछ कदम सहयोग के प्रतिदिन के जीवन में उठाएं। जो प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, सब कुछ, एक पल के लिए भी प्रकृति के सहयोग के बिना आप यहाँ बैठे हैं, जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, ये प्रकृति का सहयोग है। वो हमें अन्न, फल, फूल, सब्जियां, आवास, वस्त्र सब कुछ देती है, लेकिन हम उसे क्या दे रहे हैं और बदले में कुछ नहीं मांगती। कल भी जिक्र हो रहा था कि वो प्राचीन संस्कृति जिसमें सब कुछ सब देते थे लेकिन लेने का भाव नहीं होता था, तो आज भी उस प्रकृति से हमें पाठ सीखने की जरूरत है कि हमें भी प्रकृति को कुछ देना है। हम कुछ छोटे छोटे कदम तो सहयोग के उठा सकते हैं। आज मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए वन संरक्षण और वृक्षारोपण कितना आवश्यक है। आप अकेले भी, आपका एक परिवार 6 वृक्षों की लकड़ी साल भर के अंदर प्रयोग कर लेता है और जिस दिन आप इस दुनिया से विदा होंगे एक वृक्ष की लकड़ी आपको उस दिन भी चाहिएगी। कितना ऋण है इस प्रकृति का। तो क्या हम एक एक पौधा लगाने का संकल्प नहीं कर सकते हैं अपने परिवार के प्रत्येक प्राणी के नाम से, माँ के नाम से, बच्चों के नाम से, उनके जन्मदिन पर पौधे लगाएं, पुरस्कार और उपहार पौधों के रूप में दें, तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। उसके साथ साथ पानी को बना नहीं सकते पर पानी को बचा सकते हैं। वायु को प्रदूषित ना करें, हम थोड़ा सा अंकुश लगा लें। हम अपने घर के अंदर कितने सारे एसी प्रयोग करते हैं, कितनी 4-5 गाड़ियां, 4 आदमी है तो 4 गाड़ियां, थोड़ा सा तो उसे कम किया जा सकता है। और ग्रीन हाउस बनाने का एक संकल्प मन के अंदर जरूर रखें, क्योंकि हम अपने घर के अंदर इतनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, 2-4 कुत्ते रख सकते हैं, तो क्या 2-4 पेड़ अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। जब भी कोई बिल्डिंग बनाए एक कोना जरूर घर के अंदर ऐसा बनाए जिसमें हम वृक्ष लगाएंगे। और जो वाटिका है घर के अंदर वो बना सकते हैं, किचन गार्डन। तो इस प्रकार से हम प्रकृति को एक बहुत बड़ा ये सहयोग देते हैं, छोटे छोटे कदम उठा करके भी। आशा है कि आप यहाँ से जब जाएंगे तो कुछ ऐसे कदम अवश्य उठाएंगे और उस ईश्वर पिता से जुड़ करके अपनी आत्मा के अंदर वो शक्ति भर करके प्रकृति के प्रति वो प्रेम भाव रखेंगे तो अपने आप ही जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान अपने आप ही निकलता जाएगा। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी दीदी का। अभी एक नया टॉपिक साथ साथ में ही चलने वाला है, तनाव मुक्त पारिवारिक जीवन शैली। आप जो दूर दूर बैठे हैं ना, वो भाई बहने सब आगे आ जाए, इसमें बहुत मजा आएगा, आपको बहुत खुशी होगी, इसलिए आ जाइए। थोड़ी दिन 3 मिनट पहले हम परमात्मा को याद करते हैं।